اب اگلی صورت اس سے بھی خوبصورت ہے، الحج 78 آیات ہیں اس میں. آپ دیکھیے کہ فائیو پلرز آف اسلام ہے نا، بنجل اسلامی علی خمسن، ان پانچوں میں ایک حج بھی ہے. اور صورت حج کی یہ خوبی ہے کہ ایک رکن پہ ہے. نماز کے نام کی کوئی صورت نہیں، روزے کے نام کی صورت نہیں، زکوٰۃ کے نام کی صورت نہیں، لیکن حج کے کیوں؟ اس پوری صورت میں ابھی ہم جو پڑھیں گے نا، آپ خود بھی فیل کیجئے گا قیامت اور حج میں مماثلت. آپ دیکھیں گے ذرا، صورت کے شروع سے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا. پہلی دو آیتیں ہیں، وقوع قیامت کا ہولناک منظر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. وہ دن تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی ہر اس کو جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وہ ترن نا سسکارا، اور تمہیں ایسے لگے گا کہ لوگ تو نشے میں ہیں، حالانکہ وہ ماں ہم بھی سکارا، وہ نشے میں تو نہیں ہے. ولیکن عذاب اللہ ہی شدید، لیکن اللہ کے عذاب کی جھڑکی بڑی شدید ہے. قیامت اور حج ساتھ ساتھ، آپ ریلیٹ کر کے اگر اپنے کاپی میں لکھ رہے نا، دونوں میں آپ دیکھیے سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں، حاجی پیچھے سب کو چھوڑ کر اکیلا چل پڑتا ہے. اسی طرح ہماری جب موت آنی، ہم نے سب کو چھوڑ کے نکل جانا ہے. اور باقی مناظر دیکھیں، ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ریلیٹ کیا ہوا ہے اپنی ڈیٹیل تفسیر میں. لیکن اس وقت تو یہ ہے، حج پہ جانے کے شوقین تو بہت ہیں. حج پہ جا کر قیامت کے دن کی جواب دہی کو بھی ایک ایک لمحے پہ یاد رکھنا ہے. پھر آئے 3 سے 4 میں، بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراض کا انجام. اب دیکھیے، لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تنقید کرنے کا. کوئی گاڑی چلا رہا ہوگا تو بیچ میں بولیں گے، جھٹکا کیوں دیا، دیکھ کے چلنا تھا، تیز کیوں چلایا. اور اگر وہ گاڑی روکے کہ آئیے آپ چلا لیں، تو وہ آپ کو نہیں آتی. زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ دین کا کام کوئی بھی کر رہا ہے، دین کوئی بھی سکھا رہا ہے، آپ کو مجھے اس پہ اعتراض نہیں کرنا. بینگ اے پرسن، اس کو اڈاپٹ کیجئے، اس کو سنیے، اس کے شاگرد بنیے جو قرآن سنت سے قریب ہے اور جس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے. باقی سب کی عزت کیجئے. آج ایک یہ بڑی گستاخی ہے کہ گھر کے بزرگوں کی تو ہم عزت کرتے ہیں اور دینی رہنماؤں کے نام پر ہم عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہ کیجئے. پھر آیت 5-7 میں، دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت ہیں. یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے اس میں اصل میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل دے دیے. کون کون سے؟ پہلے بندہ نطفہ کی شکل میں آتا ہے، پھر علقہ، پھر مدغہ، پھر طفلن، اور اس کے بعد ارض العمر. سب اللہ کے دوبارہ تخلیق کرنے پر قدرت کا اظہار ہے. پانی کے ایک بوند کو اللہ تعالیٰ ارض العمر تک پہنچا سکتا ہے، تو کیا اس کو بیک ٹریک نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے نہ یہ مشکل اور نہ وہ مشکل. اس کے بعد آیت 8-10 میں قیامت کا بیان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سے مکہ والے قیامت کا انکار کرتے تھے. اور ہر بندہ جو آج بھی قیامت کا انکار کرتا ہے نا، اصل میں وہ اپنی بے عملی کو چھپاتا ہے. جیسے وہ بچہ جو پڑھے نا، تو جب ماں کہے پڑھو تو کہتے کوئی نہیں ہونے پیپرز، دیکھنا ایسے ہی پاس ہو جائیں گے، وہ ہوگا. تو کیا قیامت کے بارے میں جان لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، آپ کے میرے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کیا میرا علم آخرت ہے یا فکر آخرت ہے. عموماً لوگ اپنے آخرت کے علم کو فکر آخرت سمجھتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پھر آیت 11-13 میں، منافقانہ طرز عمل ہے. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کناروں پہ رہ کے کرتا ہے، پھر اگر اس کو خیر پہنچ جائے اطمینان پاتا ہے اس کے ساتھ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش مل جائے انقلب علی وجہہ، تو پلٹ آتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ. دیکھیے، منافق دین کے فائدے بھی لینا چاہتا ہے اور دنیا کے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. اس دنیا کو بھی ایک ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، تو آخرت کی بھی کنارے پہ رہنا کیا ہے؟ ہاف ہارٹیڈلی. لکھ کے رکھ لیجئے، جب تک کسی کام میں آپ ہول سول نہیں پڑھیں گے، فل ہارٹ نہیں ہوگا، آپ وہ کام نہیں کریں گے. آپ اور میں الحمدللہ اپنی اس کلاس میں موجود ہیں. آپ میں 90% لوگ ڈے ون سے سن رہے ہیں. جنہوں نے بعد میں سننا شروع کیا، اگر آپ نے شروع سے سنا ہے، مجھے امید ہے آپ نے آج تک سنے، کیونکہ آپ نے سننا تھا. اور آپ کہتے نہیں میں دیکھتی ہوں، اچھا میں سنتی ہوں، پتہ نہیں، اچھا تھوڑا آگے کر کے سن لوں، پیچھے کر کے سنوں. آپ نہیں سنیں گے. زندگی کا اصول بنائیے، جو بھی کام کریں پورے دل سے کریں. آپ گھر کے کام بھی نہیں پورے دل کے بغیر کر سکتے. ایک مرد کاروبار کر رہا ہے، جاب پہ کوئی مرد بچہ جا رہا ہے، پڑھنے والا بچہ اسکول، یعنی دنیا کے ہر فیلڈ میں آپ کی ماسی، जो काम आप 100% कन्विक्शन के साथ करेंगे अल्लाह वही करवाएगा आपसे। आप सिर्फ 99 पे आ जाइए, 1% की वजह से आप उस काम से रुक जाएंगे। इसलिए आगे बामल मोमिनों के लिए बिशारत आयत 14, इन अल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए अल्लाह उनको दाखिल करेगा उन जन्नतों में जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और इन अल्लाह यफ़लु मा युरीद, अल्लाह हमें अमल सालेह की तौफीक दे ईमान लाने के बाद और फिर खुशखबरियों का मिस्ताक बना दे। फिर आयत 15 से 16, उम्मीद की रस्सी थामे रखो। हमारे दीन में मायूसी की कोई जगह नहीं है। आप इन आयतों की तफसीर सुनिए, खुदकुशी की बातें हैं। यानी कुछ लोगों को इस्लाम की तरक्की अच्छी नहीं लग रही थी, अल्लाह के नबी का फैलता हुआ दीन पसंद नहीं आ रहा था, अल्लाह ने उनको एक किस्म का चैलेंज कर दिया। फिर आयत 17 में हक पर कौन है, फैसला क़यामत के दिन होगा। दुनिया में हर बंदा ख़ुद को हक पे कहता है, और ये दुनिया में पता है कि हक पे कौन है, और हक क्या है, अल्लाह हक है, कुरान हक है, उसका नबी हक है। लेकिन हर मज़हब दुनिया में आप देखेंगे कि जितने भी आज भी मज़ाहब हैं हर एक अपने आप को ठीक ही कह रहा है। तो कैसे पता चलेगा, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा। बस लोग इसे गलत फहमी का शिकार है, अच्छा फिर आज तो नहीं पता क्या ठीक है फिर वहाँ पता चलेगा, रॉन्ग है। असल में यह मुराद ये कि एक सही क्लेम कर रहा है बाकी गलत क्लेम कर रहे हैं, तो सही वाले को तो पता है कि मेरा ही ये ठीक है, लेकिन असल फैसला फिर एंड पे होगा। ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हक बात पे जमा दे। फिर आयत 18 में कायनात की हर शय अल्लाह को सजदा कर रही है, या आयत सजदा भी है, और बाद में मौका मिले तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप देखिए कि सजदा क्या है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। सजदे की जगह पर आग हराम है, यानी वो आज़ाद जो सजदे में इस्तेमाल होंगे हदीस की रोशनी में वहाँ आग हराम है। शर्त एक है कि आपके अमल के बीच में कोई और हराम चीज़ ना आ चुकी हो। सजदा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। ये जो बात मैंने की है ना कि अल्लाह बीच में कोई ना आ गई हो, तो ऐसी है कि जो हार्ट पेशेंट है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो दिल के दौरे से मरे, हैज़ हादसा भी हो सकता है, कोई और बीमारी भी आ सकती है। तो ऐसी हदीसों को सुनकर रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए कि अच्छा हम सजदे तो कर ही रहे हैं पर पता भी नहीं कि हम सजदे जो कर रहे हैं उसमें कह क्या रहे हैं। हदीस सुन लीजिए, सिलसिला तो सही है, 2097 है, अबू फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम पर हिजरत लाजिम है क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं, तुम पर रोज़ा लाजिम है क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं है, तुम पर सजदे लाजिम है क्योंकि जब तुम अल्लाह के लिए कोई सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसकी वजह से तुम्हारा दर्जा बुलंद करेगा और तुमसे एक गलती ख़त्म करेगा। और बात यह है कि सजदे में कोई और नहीं नज़र आता अल्लाह के सिवा, सब झूठे सहारे इधर उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आयत 19 से 22 में जहन्नम के अजाब का हौलनाक मंज़र है। जहन्नम के अंदर लोगों के साथ जो होने वाला है, कुरान ने जो कह दिया ये बरहक है। आज कुछ लिबरल लोग कुछ और भी ख्यालात दिल में रखने वाले कहते हैं कोई जहन्नम नहीं, तो बताइए कि फिर ये सारी आयतें क्या हैं। अल्लाह कहते हैं ये दो झगड़ने वाले अपने रब के बारे में, बस जो कुफर करते हैं काट दिए गए उनके लिए कपड़े आग के, फिर उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, वो उनके पेटों में जो कुछ उसको उधेड़ देगा और उनकी खालों को, और उनके लिए लोहे के गुर्ज हैं। जब कभी उधर से निकलना चाहेंगे कि निकल भागें उधर से उस गम से, दोबारा उसमें लौटा दिए जाएंगे। वज़ूक अज़ाब अल-ग़रीक, और कहा जाएगा चखो जलने का अज़ाब। अल्लामा जिरना मिनन्नार। 23 से 24 में हिदायत याफ्ता लोगों के लिए खुशखबरी हैं, बहुत प्यारी आयतें हैं। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, आप देखिए कि इन आयतों पर यकीन होगा ना तभी अमल होगा। ईमान लाकर अमल सालेह करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिसमें नहरें हैं। युहल्लौना फीहा मिन असाविर, पहनाए जाएंगे उसमें वो कंगन जो सोने के होंगे और लूलू के, यानी जड़ाव कंगन पहनाए जाएंगे। देखिए पहनेंगे नहीं, पहनाने में इज्जत है ना, दुल्हन को पहनाए जाते हैं, कोई मोहब्बत में किसी को पहना देता है। वह लिबासों फीहा हरीर, रेशम के कपड़े होंगे उसमें। वहुदू इला तय्यिब मिनल कौल, वो गाइड किए गए, हिदायत दिए गए एक पाकीज़ा बात की तरफ और अलहमीद के रास्ते की तरफ। क्या पता चला कि खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का रास्ता थाम लिया अल्लाह उनके बहुत से लाड़ चौ करेगा, और दुनिया में भी करता है आखिरत में भी करेगा। आगे है जी हज और कुर्बानी का जिक्र आयत 25 से 36 में। इसमें बहुत सारे हज और कुर्बानी के रिचुअल्स हैं, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ आया है ना अय्यामम मादूद, गिनती के दिन जो लफ्ज़ है, अगर इसको देखें तो ये कौन से दिन है? अय्यामम मालूमात, इससे अशरे ज़िलहज्जा मुराद है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 दिन होते हैं। इनमें किया गया नेक अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है, और इनमें कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने का हुक्म है। जब भी ये दिन आए, आपने इनको इंशाल्लाह अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। हदीस भी इसके बारे में मौजूद है, मुसनद अहमद में 2882 है, इब्ने उमर इसके रावी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा अजमत वाले हों, जिनमें नेक अमल इसको इस सबसे ज़्यादा पसंद हो बनिस्बत इन 10 दिनों के। बस इनमें बहुत ज़्यादा तहलील, तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाह अकबर, और तहमीद यानी अल्लाह अकबर कहो। अमूमन लोग ये दिन बड़ी ईद की तैयारी में गुजार देते हैं, और अल्लाह ना करे कि नमाज़ें भी कज़ा हो जाएं। फिर उसके बाद कंटिन्यू होता है हज और कुर्बानी का जिक्र आयत 31 से 36 में, जिसमें आपको मुझे बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह के नाम पर कटने वाले जानवरों की इज़्ज़त करने का हुक्म भी है, और शिर्क की कबाहतों का भी तذکرہ है। आयत 37 में एक बड़ा अहम असूल है कि कबूलियत तकवा के साथ, लन यनालल्लाहु लहुमा वला दिमाउहा। आप देखिए कुर्बानी के जानवर जब काटते हैं तो खून ज़मीन में चला जाता है, गोश्त हम खा जाते हैं, अल्लाह को क्या पहुंचा? अरब लोग कुर्बानी के जानवरों का खून बुतों को जाकर मलते थे और गोश्त उनके सामने रखते थे। हमारे यहाँ क्या है, सब कुछ तुम खा लो, अल्लाह को तुम्हारा तकवा। और तकवा क्या है कि एक इंसान अल्लाह के लिए कितना वो काम कर रहा है, और दुखावे के लिए कितना। आज कुर्बानी के जानवरों का भी बहुत डिस्प्ले होता है, किसका बकरा, कितने बकरे, क्या किया, और अब तो कह लीजिए सोशल मीडिया पे आम हुआ। बिल्कुल ना कीजिएगा ऐसा, जो चीज़ अल्लाह के लिए करनी हो वो दूसरों को नहीं दिखाते। कोई आपको कुछ दे और सबको दिखाए, अब ये हमारे यहाँ तो रस्में बन गई ना, जहेज और बरी भी दिखाते, और दुल्हन को ये और सास को ये दिया, ये पसंदीदा अमल तो नहीं। आपको अच्छा लगेगा आपको कोई कुछ देने से पहले सबको दिखा रहा है? तो बिल्कुल इसी तरह जब हम अपनी नेकियों का डिस्प्ले करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद आए 38 से 41 में क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की इजाज़त और इसकी हिकमत है। आप सूरत हज की ये खूबी लिख सकते हैं कि इसमें वो आयत मौजूद है जिसमें पहली दफ़ा मुसलमानों को गैर मुस्लिमों पे हाथ उठाने की इजाज़त मिली थी, और ये कब मिली? 13 साल के सब्र के बाद। मक्का में कुफू अईदियकुम का हुक्म था, और यहाँ आयत 439 देख लीजिए, उज़िना लिल्लज़ीना युकातलून, और वो भी इजाज़त कितनी रिस्ट्रिक्टेड थी कि क्या क्या अदब और आदाब हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों के लिए खुशखबरी और कुफार के लिए धमकी है आयत 42 से 45 में। खुशखबरी क्या है कि हर दौर का नबी आजमाया गया, लेकिन अल्लाह ने एंड पे बचा लिया उनको जो नबियों के साथ थे, और धमकी उनके लिए कि जो किसी भी दौर के नबी के सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी बात को नहीं मानते। आगे है जी आयत 46, कुफार की आंखें नहीं दिल अंधे हैं। याद रखिए कि जिस चीज़ से आप काम लेना छोड़ देंगे बिल आखिर वो ख़त्म हो जाएगी। इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट यू विल लूज़ इट, यानी अगर आप आँखों के ऊपर पट्टी बांध दें तो कुछ अरसे के बाद आप देख नहीं सकेंगे। तो जो दुनिया में चलते फिरते अल्लाह की नेमतों को खाते पीते उसको ना याद करें, अल्लाह कह रहे हैं कैसे लोग कौन है? अफलम यसीरु फिल अर्दी, क्या उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की कि बस होते उनके दिल जिससे वो सोचते, कान होते और वो उससे सुनते, यानी ना उन्होंने आंखों से फ़ायदा उठाया, ना कानों से, ना दिल से, क्योंकि फ़इन्नहा तअमल अबसार, क्योंकि आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तअमल कुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो कि सीनों में होते हैं। अल्लाह हमें इससे बचा दे। आगे आयत 47 से 48 में जालिम बर्बाद होकर रहेंगे, ये पैगाम है, यानी आज जल्दी करते हैं लेकिन कल इनका जुल्म इनको पकड़ा देगा। फिर उसके बाद आयत 49 से 51 में इंतज़ार के दो रास्ते। आप देखिए किसी को डराना या किसी को वॉर्न करना, उसके दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, एक खुशखबरियाँ देकर और एक डरावे देकर। अल्लाह दोनों को इस्तेमाल करवाता है बेहतरीन रेशो और प्रोपोर्शन के साथ। फिर आयत 52 से 57 में शैतान की आजमाइश, शैतान की आमेजिश, अल्लाह की तरफ से इस्लाह। यानी शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग सही बात सुने। कुरान पढ़ते हुए भी गलती लग जाती, हुफाज को गलती लगती, तर्जमा पढ़ते वक्त ज़ुबान छटक जाती है। तो ये ख़ास वाक़िया था अल्लाह के नबी के साथ जो हुआ, उसको बुनियाद बनाकर आपको मुझे जो इसमें पैगाम मिलता है वो क्या है कि दिलों में अल्लाह का इख़बात पैदा करो, जो आपके मेरे लिए ज़रूरी है कि कुरान पढ़ते हुए जो भी हो लेकिन फ़तुख़्बिता लहू क़ुलूबुहुम, दिल डर जाए। आप देखिए कि इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि अल्लाह ने दिलों की तीन अकसाम बनाई हैं, सख्त दिल, कमज़ोर दिल और आजजी वाला दिल। और ये जो आजजी वाला दिल है ना, ये मोमिन का दिल होता है, यानी ईमान वाला आजजी करने वाला दिल होता है। कमज़ोर दिल वाले कौन हैं? जिनके दिलों में कमज़ोरी है, मुराद निफाक, अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। सख्त दिल कौन है? इनको कोई वाज और नसीहत फ़ायदा नहीं देती, इनके दिलों की सख्ती की वजह से ना इनको अल्लाह की और ना इसके रसूल की कोई बात समझ आती है। ज़रा सा सोचें, हर दिल की कसम पर अपना जायज़ा हम लें कि मेरा दिल कौन सा है, और इसके बरक्स अहले ईमान के दिल कौन से है? इल्म वालों के लिए शैतान का वसवसा रहमत बन जाता है, क्योंकि वो फौरन वॉन हो जाते हैं, डर जाते हैं, मुतनब्बे हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को ईमान वाले दिल बना दे। उसके बाद है जी अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों के सिले। हिजरतें तो बहुत वजूहात से होती हैं, कभी माल कमाने के लिए, कभी शादी के लिए, कभी पढ़ने पढ़ाने के लिए, लेकिन अल्लाह किस हिजरत की तारीफ़ करता है? वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते की हिजरत, अल्लाह के दीन के लिए इधर से उधर जाना आना। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को क्या सिला मिलेगा जो गए, मर भी गए या मार दिए गए, ला यरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, लिख के रख लीजिए। जिस हिजरत पे रिज़्क़े हसना का वादा है वो हिजरत फ़ी सबीलिल्लाह। आप कहते हैं नहीं, फलां के शौहर दुबई गए थे फिर बहुत सारे पैसे आने लग गए, फिर वो अमेरिका गए तो फिर तो और भी आने लग गए, ये आपको मुझे लग रहा होता है। असल बात पता क्या है? पैसे कागज़ के नोट हैं, असल चीज़ उसकी बरकत है। जो चीज़ अल्लाह के रस्ते में मिलती है उसमें बरकत बहुत होती है। अब इससे हम आप ये नहीं सोच सकते कि जो बाहर चले गए हैं वो कोई गलत काम कर रहे हैं। हमें यहाँ सिर्फ अपनी ज़िंदगी को इस नज़र से देखना है कि क्या मैं अल्लाह के दीन की नुमाइंदा हूँ, मेरी किधर ज़रूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ हूँ। आप देखिए कि हर मशीन हर जगह काम नहीं करती, इवन वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। आप बाहर के मुल्कों से कोई मशीन ले आते हैं, इधर आती है अक्सर जल जाती हैं अगर आप उसके अंदर कोई बीच में कन्वर्टर ना लगा दें। तो जिस बंदे को अल्लाह का दीन प्यारा होगा ना, वो पूरी दुनिया में जाकर कामयाब है। और जिसका मामला इससे उलट है, क्या पता आप दूसरी चीज़ के साथ कैसे फिर होते हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमारी नस्लों को अपने रस्तों में हिजरत करने वाला बनाए। और ये हिजरत जगहों की नहीं है, पहले नापसंदीदा चीज़ें, अपनी आदत तो छोड़ो, अल्लाह की पसंद के तो बनो। फिर उसके बाद देखिए कि मज़लूम को अल्लाह की मदद मिलती है। ये मैसेज है आयत 60 से 62 में, यानी जो अपना काम खुद नहीं कर सकता, बेचारा बदला नहीं ले सकता, जिसके पास पैसे ही नहीं है कि किसी वकील को हायर करे, है वो मज़लूम तो बेफिक्र हो जाए, अल्लाह अलवकील भी है, उसकी मदद करेगा। फिर आयत 63 से 66 में अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाता है, ये पैगाम है। और इसमें बारिश की बड़ी खूबसूरत मिसाल दे के अल्लाह ने बता दिया कि इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। और उसके बाद आयत 67 से 72 में इबादात के तरीके पर एतराज़ क्यों। यहाँ से अब बिल्कुल सूरत का भी ततिम्मा है, पारा भी पूरा हो रहा है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जो इबादत के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उसको बुनियाद बनाकर शिर्क की तरफ आपकी मेरी तवज्जो देकर अगली आयतें 73 से 74 में अल्लाह ताला की मार्फत की कमी शिर्क का सबब बनाती है। और ये कुरान पाक की खूबसूरत तरीन तमासील में से एक तमसील है। मिसाल, या यूहन्नास, ए लोगो, दूरी बमा सलूम, एक मिसाल बयान की जा रही है। फस्तमेउ लहू, कान लगा कर सुनो, गौर से सुनो। अब आगे मिसाल वही है जो आपने बहुत दफ़ा सुनी है कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, सारे जमा हो जाएं। चलो मक्खी पैदा करना तो दूर की बात, वहीं यस लुब हुमुश जुबाब उशैया, अगर मक्खी उनसे कुछ छीन भी ले, कोई चीज़ उनके खाने में कोई कतरा उठा ले, वो उससे छुड़ा नहीं सकते। ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु, क्योंकि दउफत तालिबु वल मतलूब, ये है असल में इसकी बात। मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमज़ोर, और शिर्क होता क्यों है? मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही ना की जो कि उसकी कदर का हक था, हालांकि अल्लाह ताला कवी भी है और अजीज़ भी है। क्या पता चला दउफत तालिबु वल मतलूब से कि अल्लाह के सिवा जिन को पुकारा जाता है वो तो मक्खी पैदा नहीं कर सकते, हमारी हाजात कैसी पूरे करेंगे? आप देखिए पीछे नाहल का जिक्र हुआ ना, शहद की मक्खी बामकसद थी, प्रोडक्टिव थी, अल्लाह ने उसके नाम पे सूरत दे दी। और मक्खी के बारे में तो किसी ने कहा कि उसकी 500 आंखें होती हैं, तो क्या फ़ायदा, क्या बैठती तो फिर भी गंदगी पे है। तो ये बहुत ही क्लाइमेक्स है कुरान का, कि बिल्कुल बेबसी की आखिरी कैफियत पेश करके जो पैगाम दिया कि शिर्क अल्लाह की नाकदरी का नाम है, माँ कदरुल्लाह हक्का कदरी। और उसके बाद फिर आयत 75-76, अल्लाह हमारे हर अमल से वाकिफ़ है, इसका यकीन होगा तो उम्मत मुस्लिमा अपने आप को सीधा करेगी। जब आपको यकीन है ना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप अपने हर अमल की बात को तनकीदी नज़रों से देखते हैं। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइका की बात इधर है ना, कि अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को भी चुना, यानी अल्लाह चुन लेता है अपने फरिश्तों को पैगाम देने के लिए और कुछ लोगों को, और अब आगे आखिर में चुनी हुई कौम उम्मते मुस्लिमा उसके लिए के झंडा। बेहतरीन खूबसूरत आयते हैं 77 से 78 में उम्मते मुस्लिमा का एजेंडा। अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ इन चंद आयतों को, ये दो आयात हैं, अगर आप उम्मते मुस्लिमा जो इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन है उसके ऊपर फैला दें और वो इस आयत के मुवाफिक हो जाएं, तो अल्लाह की रहमत से इस्लाम का रोशन मुस्तकबिल है। क्या है ज़रा सा काउंट कीजिए, एक तो इसमें आयत सजदा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने रब की और खैर के काम करो ताकि तुम फला पालो। ये है ज़ाती इबादत, वही अंदाज़ है जो सूरत अल असर का भी है। यहाँ तक काम करके मुसलमान बीइंग अ पर्सन इंडिविजुअली तो बच जाएंगे क़यामत के दिन, लेकिन वजाहिदु फिल्लाही हक्क जिहादिही से लेके आगे इज्तमाई काम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास से बात चली थी, वजालनाकुम उम्मतन वसतन की बात हुई थी, यानी सूरत बकरा से लेके आज सूरत हज तक यहाँ अल्लाह ने आपको मुझे वो आयत दे दी जिससे पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा के करने के काम क्या हैं, कि वो अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करे, क्योंकि उसने तुमको चुन लिया और उसने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी भी नहीं रखी। तुम्हारा कोई नया दीन नहीं है, तुम्हारे इब्राहिम यानी बाप इब्राहिम का, और यहाँ हाईलाइट कीजिए हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन को, जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा मिन कबलू वफी गाजा, पिछले अधियान में भी और इस दीन यानी इस्लाम में भी है। तो फिरका वराना नामों पे जाना और लफ्ज़ मुस्लिम को छोटा जानना, ये नाकदरी की बात है। फिर आगे क़यामत के दिन की गवाहियों की बात करके, नमाज कायम करके, ज़कात देने के बाद वा तसीमू बिल्लाह की बात की, हुआ मौला कुम फ़नेमल मौला व नेमन नसीर। तो ये था इस पारे और इस सूरत का मैसेज, कि अगर आज के मुसलमान इस एजेंडे पे काम कर लें तो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन चैन भी लाएगा, पूरी दुनिया से गलत चीज़ें और ख़राबियाँ भी जाएंगी और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। और शर्त यह कि मुसलमानों का अपना ये मकसद याद हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामले फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।